ओम शांति। 10 दिसंबर 1978 अव्यक्त मुरली। इसका आधार है कि सदा एक लक्ष्य हो कि हम दाता के बच्चे बन सर्व आत्माओं को, हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं नहीं, हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो दे भी नहीं सकेंगे। तो जो संपन्न आत्मा होगी वह सदा तृप्त आत्मा जरूर होगी। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, जितना देना उतना लेना है। प्रैक्टिकल में लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला बनना है। दातापन की भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदु की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखे, नजर एक बिंदु की तरफ ही हो। जैसे यादगार में भी दिखाया हुआ है कि क्या नजर बिंदु की तरफ ही हो, बाकी चीजें देखते हुए भी न देखे। जैसे यादगार में दिखाया हुआ है कि मछली के तरफ नजर नहीं थी लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु। तो विस्तार को नहीं देखो लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखो। इसी प्रकार अगर कोई भी बातों के विस्तार को देखते तो यदि विस्तार को देखते हैं तो विठल भाई क्या हो जाता है? अगर विस्तार को देखते हैं तो क्या होता है? और तो विघ्नों में आते अर्थात सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाता। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्थिति हो जाती है। यह विशेष अभ्यास करना है। विस्तार को देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने, यह प्रैक्टिस अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी अति कैसे होंगे, आने वाले दृश्य कैसे होंगे, भयानक होंगे। अभी की बात है, उसकी बेड में तो कुछ नहीं है। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में इस विकराल दृश्य को देखते हुए घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। ऐसी स्टेज हो जाए जिसमें साकार शरीर भी आकारी रूप में अनुभव हो, जैसे आकार रूप में देखा साकार शरीर भी आकारी फरिश्ता रूप अनुभव किया। चलते फिरते कार्य करते आकारी फरिश्ता अनुभव करते थे। शरीर तो वही था ना, लेकिन स्थूल शरीर का भान निकल जाए कारण स्थूल शरीर होते हुए भी आकारी रूप अनुभव करते थे। तो ऐसा अभ्यास आप सबको हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म होता रहे लेकिन मनसा द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वायुमंडल का फैला हुआ हो, वाइब्रेशंस का फैला हुआ हो। जिस भी स्थान पर जाए तो यह फरिश्ता रूप दिखाई दे कर्म कर रहे, लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था, कर्म बल बहुत साधारण था लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। कोई भी स्थूल कार्य धोबीघाट का या सफाई आदि का कार्य कर रहे हैं, भंडारे का कार्य कर रहे लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आवेगा जो देखने वाले यही वर्णन करेगी कि इतनी महान आत्माएं फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है, कार्य साधारण और स्थिति अति श्रेष्ठ। तो कितनी सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें। तो अव्यक्त मुरली है, 10 दिसंबर 1978। मुख्य रूप से यहाँ चार बातों का बाबा ने वर्णन किया है। सबसे पहले कहा है, इसका आधार है ही सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है न कि लेना है। यह करे तो मैं करूं नहीं, हर एक दातापन की भावना रखे तो सब देने वाले अर्थात संपन्न आत्मा हो जाएंगे। संपन्न नहीं होंगे तो भी दे नहीं सकेंगे। तो सबसे पहली बात की है दातापन की। दाता बचपन की चर्चा हमने बहुत बार हम कर चुके हैं, इसके लिए आज वो चर्चा नहीं करेंगे। दाता कौन बन सकता है, दान क्यों करना है, दान का क्या महत्व है, दान कितने प्रकार का है, बहुत विस्तार से बहुत सारी क्लासेस में यहीं पर चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर दाता की दो क्वालिफिकेशंस चाहिए, कौन सी? एक तो संपन्न चाहिए, वही दे सकता है, दूसरा जो रहम दिल है। तो रहम होना और संपन्न होना, जिसके पास है, जो तृप्त है, जिसके पास भरपूरता है, वही दे सकता है। जिसके पास है ही नहीं, वो नहीं दे सकता है। तो दातापन के लिए पहला क्वालिफिकेशन है कि संपन्नता, और दूसरी क्वालिफिकेशन है अगर किसी के पास है भी परंतु यदि हृदय संकुचित है, छोटा है, कंजूस है, तो भी नहीं दे सकता। तो दाता के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो संपन्नता और दूसरा रहम। इसकी चर्चा आज हमें नहीं करनी है, हमें आगे की चर्चा करनी है। आज जितना देना उतना लेना ही है, प्रैक्टिकल में लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले बनना है। दातापन की भावना सदा क्या करती है, निर्विघ्न बनाती है, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है, सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे। तो पहली पॉइंट यहाँ है दातापन की। अभी दूसरी पॉइंट है सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। एक लक्ष्य अर्थात बिंदु की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई भी बातों को देखते हुए भी नहीं देखो, नजर एक बिंदु की तरफ हो। जैसे यादगार में क्या बताया है सागर भाई, किसका उदाहरण बताया है, जैसे यादगार में भी दिखाया मछली की तरफ नजर नहीं थी लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। पर अर्जुन के जीवन में दो प्रसंग है, एक तो पक्षी का और दूसरा मछली का, पर बाबा ने यहाँ पर थोड़ा दोनों को मिला दिया है। वास्तव में ये जो प्रसंग है ये द्रोणाज बर्ड आई टेस्ट जिसको कहते हैं, द्रोणाचार्य ने जो पक्षी के आंख की जो टेस्ट की थी गुरुकुल में, और दूसरा है द्रौपदी स्वयंवर। तो पक्षी द्रोणाचार्य के वहां होता है गुरुकुल में, और मछली जो होती है वो स्वयंवर में होती है, पर बाबा ने वो मछली को इधर ला लिया है आज। कि तो यादगार रूप में भी दिखा है कि मछली की तरफ नजर नहीं थी लेकिन आंख की भी बिंदु में थी। तो मछली है विस्तार और सार है बिंदु, तो विस्तार को नहीं देखा लेकिन सार अर्थात एक बिंदु को देखा। इसी प्रकार अगर कोई भी बात के विस्तार को देखते हो तो क्या हो जाओगे, विघ्नों में आओगे, और सार अर्थात एक बिंदु रूप स्थिति बन जाती है और फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लग जाता है। कर्म में भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, स्मृति में भी बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती। यह विशेष अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है, यह आज का काम है, आज के लिए होमवर्क। कौन सा? बिंदु लगाना तो है ही, और दूसरा काम बताया है। आज का अभ्यास कौन सा है? रोज नए नए अभ्यास। घी भी पिलाते हैं बाप तो अभ्यास कराते हैं और शेयर कराते एक्सरसाइज। तो आज की एक्सरसाइज कौन सी है, विस्तार को देखते हुए भी। चंद्रशेखर भाई जी क्या करना है, विस्तार को देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न सुने, यह प्रैक्टिकल अभी से चाहिए। तब अंत के समय चारों ओर की हलचल की आवाज जो बड़ी दुखदाई होगी, दृश्य भी कैसे होंगे, भयानक। अभी की बातें उसकी भेंट में तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने साकार मूल्यों में कहा है, अभी के तुम्हारे दुख तो कुछ भी नहीं है, दुखों के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, और फिर क्या खड़े होंगे उधर, सुख के पहाड़ उधर खड़े होंगे फिर। अगर अभी से ही देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना यह अभ्यास नहीं होगा तो अंत में भी इस विकराल दृश्य को देखते एक घड़ी के पेपर में सदा के लिए फेल मार्क्स मिल जाएंगे। फेल होने को कितना टाइम लगता है, एक सेकेंड, 8 घंटा, 16 घंटा तपस्या करो, 16 घंटे की तपस्या 6 घंटे के कर्मयोग में, कर्म में जाओ और उसमें व्यर्थ आया कि खलास। 6 घंटे सेवा में गए उसमें 18 घंटे की जो तपस्या है एक तरफ। इसलिए यह भी विशेष अभ्यास चाहिए। कौन सा? कौन सा? एक ही तो अभ्यास बताया, विस्तार को देखते हुए न देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अगर कोई व्यर्थ की बातें सुनाए तो संतोष भाई उसको क्या समझना चाहिए? कल की साकार मुरली। यदि कोई व्यर्थ की बातें सुनाए तो प्रकाश भाई उसको क्या समझना चाहिए? ऐसा समझना है विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, क्या समझना है तुम्हें? योगी का कोई दुश्मन नहीं होता है, तो सुना अनसुना कर दो। बाबा ने कल कहा है, पर कड़े शब्दों में, यदि कोई तुम्हें व्यर्थ सुनाए, इविल सुनाए, ना तो सुनना है, और यदि कोई सुनाने आ जाए तो उसे मंजू बहन क्या समझना है? अपना दुश्मन समझो। विस्तार को सार में समाना, देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना। उदाहरण दिया अर्जुन का, क्या उदाहरण है? कि दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई, दुर्योधन ने कह ही दिया एक बार कि आप जो है पक्षपात करते हो, अर्जुन की तरफदारी, फेवरेटिज्म, निपोटिज्म, हमेशा अर्जुन को ही श्रेष्ठ समझते हो। उसके बाद ही ये परीक्षा का आयोजन किया गया कि एक लकड़ी का पक्षी बनाया गया, दूर झाड़ पर रखा गया और एक एक से पूछा गया कि बताओ क्या क्या दिखता है। तो किसने क्या क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा मुझे क्या क्या दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टाल टालियां दिख रही है, और क्या दूसरे पक्षी भी दिख रहे हैं, गुरुजी भी दिख रहे हैं। दूसरे शिष्य को बुलाया गया, एक एक शिष्य आता है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहता है मुझे आकाश दिख रहा है और बाकी पक्षी भी दिख रहे हैं। कोई कहता है मुझे पक्षी दिख रहा है और पक्षी की आंख भी दिख रही है। कोई दूसरा आता है, वो कहता है मुझे क्या दिख रहा है, दो दो पक्षी दिख रहे हैं। कोई कहता है बहुत सारे, कोई कहता है दो, कोई कहता है एक, कोई कहता है मुझे पक्षी भी दिख रहा है, आंख भी दिख रही है, कोई कहता है मुझे पक्षी की आंख भी दिख रही है। अर्जुन को बुलाया जाता है, सबको कहते हैं ठीक है जाओ, मारने को किसी को नहीं कहते। अर्जुन को बुलाया जाता है, अर्जुन को तुम उसको पूछते तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो उसका क्या उत्तर था? आग की पुतली और पक्षी दिखाई दे रहा है, पक्षी की आग दिखाई दे रही है, आग की पुतली दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन क्या कहता है? वो कहता है सबसे पहले कहीं कहीं लिखा हुआ है, वो कहता है मुझे केवल अंधकार दिखाई दे रहा है, डार्कनेस। डार्कनेस कौन सा? पक्षी के आंख के पुतली के अंदर जो कालापन है, बस मैं वो नहीं देख रहा हूं। उसको फिर पूछा जाता है, पक्षी बोलता है पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है, झाड़ नहीं, फिर गुरु कहते हैं कि अब मारो, तब वो मारता है। तो बाबा यहां क्या कह रहे हैं? सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, बिंदु में लक्ष्य बैठा हुआ है, आज की मुरली में है एक जगह, आप बुद्धि में लक्ष्य है, वह लक्ष्य है बिंदु, एक लक्ष्य अर्थात बुद्धि बिंदु की तरफ सदा देखने वाले, अन्य कोई बातों को देखते हुए भी नहीं देखो। कितनी बड़ी शिक्षा है ये, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कितनी बातें आती है, आती रहती है हर दिन नई बातें, यदि हमारे जीवन में नहीं तो बाहर आती रहती है, और हर चीज में न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर, मीडिया, हर दिन नई कहानी, पत्रकार लोग तो पीछे ही है नई नई कहानियों के, एक कहानी पूरी नहीं होती अभी दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, चौथी कहानी, कहानियां ही कहानियां है, हर एक को इंटरेस्ट इसमें है कि उधर क्या चालू है, उधर क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, विस्तार है सारा, उस विस्तार में ही इंटरेस्ट है। बाबा कह रहे विस्तार को देखो ही नहीं। काम दो प्रकार के होते हैं आज की मुरली, दो प्रकार के कौन से कर्म है मंजू बहन? साकार मुरली, आशीष भाई, मुरली दो काम दो प्रकार की है, कमाई दो प्रकार की है, दो दो बताया आज। एक तो काम वो है जिसमें बुद्धि की आवश्यकता है, एक दूसरा काम है जिसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। तो चलते फिरते घूमते तुम बाप की याद में रह सकते हो। कुछ कुछ काम बुद्धि वाले हैं, कुछ कुछ काम जिना जिसमें ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं होती है, आराम से बाप की याद कर सकते हो। जहां पर बहुत ज्यादा डिसीजन लेने होते हैं, बुद्धि लगानी होती है ऐसे काम, तो जहां पर बुद्धि नहीं लगानी होती है वहां आराम से बाप की याद कर सकते हो। यहां बाबा दूसरी बात कह रहे हैं, यहां बातें चल रही है फोकस की, एकाग्रता की, लक्ष्य की ओर एकाग्र हो, और विस्तार जो है उसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो। विस्तार जो है हमारा इंटरेस्ट उसमें बहुत है, इसलिए हमारा मन उधर खींचा जाता है विस्तार की ओर, क्या हो रहा है। जैसे दिखाया है, एक व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में आता है, धर्मशाला में, वो कहता है मुझे दो दिन के लिए रुकना है। वो कहता है बिल्कुल जगह खाली नहीं है, एक भी कमरा खाली नहीं है, पर वो कहता है मैंने सुना एक कमरा खाली है। वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो कमरा मैं तुमको नहीं दे सकता, क्योंकि उसी कमरे के सीधा नीचे एक ऐसा व्यक्ति रहता है कि वो व्यक्ति बहुत झगड़ा करता है, थोड़ी भी आवाज अगर तुमने कर दी ऊपर के कमरे में तो सीधा बहुत बड़ा इधर बवाल झगड़ा खड़ा हो जाएगा, इसके लिए वो कमरा मैं तो खाली ही रखता हूं, क्योंकि नीचे जो आदमी है बहुत झगड़ालू है, बात बात में झगड़ा करता है, थोड़ा भी आवाज हुआ तो झगड़ा करता है, इसके लिए ऊपर आज तक जितने लोगों को रखा सबसे उसने झगड़ा किया। तो ये व्यक्ति कहता है देखो मैं सारे दिन भर तो काम में बिजी रहूंगा, खाली रात में सोने के लिए आना है मुझे बस, और वो भी लेट आऊंगा, तो मेरा तो कोई आवाज करने का सवाल ही नहीं है, नीचे का जो व्यक्ति है उससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मैं खाली सुबह लेट आऊंगा और सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, तो मेरा तो आवाज करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। तो वो लेट आता है, तब तक तो सब सोए हुए होते हैं, अपने कमरे में जाता है ये आदमी जो रहने आता है रेस्टोरेंट, वो जो है रेस्टोरेंट का मालिक है, ठीक है मान जाता है, ठीक है कहता है ओके। तो वो लेट आता है रात में सोने के लिए और बहुत थका हुआ होता है, और जूता निकालता है और धड़ाम से जूता नीचे गिरता है, और जैसे आवाज होता है उसको एकदम ध्यान में आता है वो नीचे तो वो आदमी है, तो वो दूसरा जूता बहुत आराम से निकालता है और चुपचाप रखता है, और फिर थका इतना होता है कि सो जाता है। 15 मिनट के बाद दरवाजे पर ठक ठक ठक। तो वही नीचे वाला आदमी आता है, तो वो कहता है क्या वो जूता तुमने निकाला था। वो बोलता है बहुत मेरी गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। तो बोलते हैं सॉरी की बात नहीं, वो दूसरे जूते का क्या हुआ। वो तो जूता ठीक है, वो जो दूसरा जूता है उसकी आवाज नहीं है, उसका क्या हुआ, क्योंकि वो दूसरा जूता ही बुद्धि में घूम रहा है। उस दूसरे जूते का क्या हुआ, हर एक मनुष्य के बुद्धि में बस यही घूम रहा है, उसका क्या हुआ। आधी स्टोरी तो पता है, आगे क्या हुआ, पकड़ तो लिया गया उसको, आगे क्या चल रहा है, सजा कितने साल की हुई और क्या क्या हुआ। जूता बुद्धि में घूम रहा है, लटक रहा है। वो व्यक्ति कहता है क्या करूं मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था, मैं तो भूल भी गया था कि एक जूते की आवाज हुई, पर बाद में मैं ये सो ही नहीं सका कि आखिर उसका हुआ क्या, इसलिए मैं पूछने आया हूं। विस्तार को न देख, क्या करो सार को देखो, देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना। संसार में हजारों बातें होती रहेगी, परंतु हमारा उसमें कितना इंटरेस्ट है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ही वो बातें हमको खींचेगी। बाबा ने कहा ये अभ्यास करो आज सारे दिन भर, बातें आएंगी, हजारों बातें आएगी, एक व्यक्ति के ही जीवन में सुबह से लेकर रात तक कितनी बातें, फिर तो दूसरे व्यक्तियों के जीवन में कितनी सारी है, समाज में कितनी सारी है, संसार में कितनी सारी है, उसमें भी अलग अलग फील्ड्स, राजनीति में हजारों बातें रोज की है, मीडिया की हजारों बातें, स्पोर्ट्स की हजारों बातें, बाकी जितने डिपार्टमेंट से संसार में हरेक की अपनी अपनी बातें हैं, हरेक में कहीं ना कहीं गड़बड़ घपला कुछ ना कुछ हो रहा है। यदि हम सारी बातों को अपनी बुद्धि में रखे, ट्रैक रखे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं, यादगार में उदाहरण दिखाया, उसने कुछ भी नहीं देखा, सारी चीजों को बुद्धि से हटा दिया और फोकस केवल और केवल केवल और उस आंख की उस पुतली पर किया। बीच में एक इंटरव्यू हुआ था एआर रहमान का, एआर रहमान से पूछा गया था कि आप जो ये संगीत की रचना करते हो कैसे करते हो, जो न्यू आइडियाज जो लाते हो कैसे लाते हो, मतलब क्या करते हो, क्या प्रिपरेशन करते हो, कैसे करते हो, मतलब ये उसमें जो एक फ्रेशनेस होती है वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब कैसे आप अपने आप को ये सारी जो चीजें उससे अलग करते हो। तो उसने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, ऐसे उत्तर केवल मतलब जो संगीतज्ञ है या तो कोई कवि है या तो कोई आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उनके उत्तर है ये। उसने कहा कि जब मुझे किसी संगीत की रचना करनी होती है, सबसे पहले मैं अपने आप को सब तरह से डिटैच कर लेता हूं, हर चीज से, प्रसिद्धि, नाम, वो कौन सी फिल्म है, सब सब बातों से एकदम एकदम आई मेक माई माइंड एब्सोल्यूटली ब्लैंक, मैं अपने मन को पूर्ण तरह रिक्त कर देता हूं और उस थॉटलेसनेस, उस एम्प्टी स्टेज ऑफ द माइंड जहां हो जाती है वहां पर वो नव संगीत का अवतरण होता है। परंतु पहले अगर मैं यही अवस्था में रहूं जिस अवस्था में मेरे सारी टीम है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनसे भी डिटैच हो जाना पड़ता है, उनसे भी अलग हो जाना पड़ता है, अलग एकदम, या तो प्रकृति के सानिध्य में या तो सबसे अलग, एक अपनी ही एक, मैं एक अपनी ही दुनिया में चला जाता हूं, उस दुनिया में कुछ भी नहीं है इस संसार का, वहां जाकर संगीत की रचना होती है और फिर मैं बाहर की दुनिया में आता हूं। मोजार्ट ने भी इसी तरह के अनुभव बताए हैं। मोजार्ट होता है ना संगीतज्ञ, जिसकी कितनी महिमा है। तो माइंड को विस्तार से रिक्त करना और लक्ष्य की ओर फोकस करना, तो ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो और विधि क्या है विस्तार को सार में समाने की, क्या किया जाए, जो कर्म कर रहे उसमें एकदम लिप्त ना हो जाए। आगे और एक बात कही, इसमें चार बातें हैं, पहली बात कही दातापन की, दूसरी बात कही है यहां पर विस्तार को सार की, तीसरी बात कही है फरिश्ते की, और चौथी बात कही है कर्म साधारण स्थिति महान। कहा ना यहां पर कि कर्म साधारण हो परंतु स्थिति कैसी हो तुम्हारी, बहुत महान हो। जैसे शुरू शुरू में यह अभ्यास कराया था कि कर्म भला भल बहुत साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण काम होते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे, कोई भी स्थूल कार्य धोबी घाट या सफाई आदि का कर रहे, भंडारे का कार्य कर रहे लेकिन स्थिति ऐसी महान हो, कैसी महान, ऐसा भी समय प्रैक्टिकल में आएगा जो देखने वाले यही वर्णन करेगी कि इतनी महान आत्मा है फरिश्ता रूप और कार्य क्या कर रही है, कार्य साधारण स्थिति महान। ये सारी चारों ही चीजें जो यहां पर बताई है, चाहे दातापन की स्थिति कर्म में तो विघ्न रूप विघ्न मुक्त रहेंगे, चाहे दूसरी जो बात कही यहां पर कर्म कर रहे परंतु उस विस्तार में कहीं फंस नहीं रहे, लक्ष्य अपने सामने है, लक्ष्य पर बुद्धि है, तीसरी बात जो कही है फरिश्ता स्वरूप, जो कर्म कर रहे उसमें भी फरिश्ता स्वरूप, जैसे कि कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होता रहे परंतु मनसा द्वारा वायुमंडल शक्तिशाली स्नेह संपन्न सर्व के सहयोग के वाइब्रेशंस का फैला हुआ हो, और चौथी बात कही कर्म बहुत साधारण से है झाड़ू लगा रहे परंतु स्थिति बहुत ऊंची, रोटी बना रहे परंतु स्थिति बहुत ऊंची, या तो सेवा कर रहे स्थूल सेवा या तो ज्ञान सुनाने की सेवा कर रहे, या दो लोगों को सुना रहे या लाखों लोगों को सुना रहे, कोई भी सेवा, सेवा का वो महत्व नहीं है, महत्व है स्थिति का, किस स्थिति में किस एटीट्यूड में वो सेवा की जा रही है। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा ना हो मंजू बहन, तब तक क्या कर्म करते समय आज की मुरली में बहुत सुंदर वाक्य है, जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा न हो, पराकाष्ठा अर्थात कल्मिनेशन, टॉप पॉइंट, सर्वोच्च अवस्था, चरम सीमा, उसकी क्लाइमेक्स, शिखर, जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा न हो तब तक आज की साकार मुरली बुद्धि में रहे कि हमें कंपेनियन हो रहना है, बुद्धि में रहे हमें कंपेनियन हो रहना है। तो कर्म करते समय विस्तार में न खो जाने की एक विधि है उसको कंपेनियन बना के रखना, एक। दूसरा है आत्माभिमानी स्थिति, तीसरा है स्वमान की स्थिति, चौथा है क्या क्या करें विस्तार को सार में लाने के लिए, या विस्तार में सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, अपने लक्ष्य को सामने रखना। अगला, तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से किरणें लेना है और विश्व की आत्माओं को देना है, बाकी सब निमित्त मात्र सेवाएं है। यही एकमात्र सेवा है, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में सेवा की परिभाषा दी है, ज्ञान सूर्य से ज्ञान की किरणें लेना और विश्व की आत्माओं को देना, बाकी जो भी सेवाएं है निमित्त मात्र सेवाएं है, उसका कैसा अहंकार और काहे का अहंकार। मेन सेवा तो ये है, लेना और देना। तो दातापन का भी भाव हो तो भी विस्तार में नहीं जाएंगे, और बीच बीच में साक्षीपन का अभ्यास, बीच बीच में अपने आप को सब चीजों से डिटैच कर देना है, सब चीजों से डिटैच्ड, कुछ भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं, ये खाली प्ले हो रहा है यहां पर। बीच बीच में इतना अलग हो जाना है हर चीज से, जैसे प्ले हो रहा है, खेल हो रहा है, ये स्वप्न है, इस तरह से। यही सारे संकल्प है जो आपको अलग कर सकता है हर चीज से, मिथ्या, मिथ्या भी कह सकते हैं। बाबा ने तो कहा ये संसार रियल है, परंतु मिथ्या इस रीति से है कि यहाँ के सुख मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है, यहाँ के सब सुख मिथ्या है, यहाँ के सब संबंध झूठे है एक रीति से। तो ही व्यक्ति को वैराग्य चाहिए यहाँ से डिटैच होने के लिए, नहीं तो पकड़ा हुआ है व्यक्ति, इसको कैसे उसको छोड़ेगा, जब उसको पता चलेगा ये छोड़ो ये मिथ्या है। एलिस इन वंडरलैंड नाम की किताब है, उसमें एक संवाद है एलिस का और ट्विडलडम का, वो एक पक्षी है छोटा सा। तो एलिस रो रही है बहुत, अकेली है, उसको आंसू आ रहे हैं, तो वो कहता है उसको, तुम रोती क्यों हो? तो बोलती, क्या करूं मैं, रोऊं नहीं क्या? तो वो कहता है, अरे तुम तो मिथ्या हो। तो बोलती, मिथ्या, मैं मिथ्या कैसे हो सकती हूं, मैं तो हूं। वो कहती है, नहीं, तुम एक राजा का स्वप्न हो। तो बोलते, राजा का स्वप्न, मैं राजा का स्वप्न नहीं हूं, मैं हूं। बोलते, नो, यू आर बट अ ड्रीम ऑफ अ किंग, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। वो कहती, नहीं, मैं हूं। अगर मैं, वो कहता है, नहीं, तुम तो झूठ हो, तुम हो ही नहीं, तुम केवल एक स्वप्न हो, अगर राजा उठ जाए तो तुम्हारा अस्तित्व कहां है, क्योंकि तुम राजा का स्वप्न हो। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, उन दोनों की लड़ाई होती है। वो कहती है, मैं सत्य हूं, मेरा अस्तित्व है। वो कहता है, नहीं, तुम राजा का स्वप्न हो, केवल राजा को उठने की देरी है, राजा उठ गया तो तुम खत्म। वो कहती है, अगर मैं राजा का स्वप्न हूं तो मेरे ये आंसू और मेरा ये रोना। वो कहता है, ये भी झूठा है, ये भी झूठा ही है, ये पागल लड़की, ये तुम्हारे आंसू भी झूठे और तुम भी झूठी हो, तुम हो ही नहीं, तुम्हारा रोना भी झूठा है, क्योंकि तुम स्वप्न हो। ऐसा एक छोटा सा संवाद है ट्विडलडम का और एलिस का। तो कहने का भाव, वो तो चलो बच्चों की किताब है, बच्चों के अर्थों से लिखी हुई है, पर अध्यात्म छिपा हुआ है, एक एक लाइन में अध्यात्म है उस कहानी में, एक एक संवाद में अध्यात्म है, एक एक जो संवाद हो रहे है, छोटी छोटी बातों में संवाद जो हो रहे है, उसमें अध्यात्म ही अध्यात्म है। अगर कोई अध्यात्मवादी उस छोटे बच्चों की किताब पढ़े, बच्चों के लिए तो एंटरटेनमेंट है। एलिस जाती है एक जगह वो टी पार्टी में, मैड हैटर और मार्च हेयर की, वो खरगोश, और उसकी टी पार्टी चालू रहती है। तो टी पार्टी में एलिस बैठती है, छोटी सी बच्ची, वो टी पार्टी चालू है वहां पर। वो कहती है, जैम कहाँ है? जैम, ब्रेड जैम। वो कहता है, जैम यहां पर एवरी ऑल्टरनेट डे मिलता है, एक एक दिन छोड़ के। पर वो कहती है, कल भी तो नहीं था, वो कहते हैं हमारा ऑल्टरनेट डे मतलब यस्टरडे का, या तो कल, हर दिन छोड़ के मतलब कल में, या तो जो आने वाला कल है ना उसमें एक एक दिन, आज के लिए नहीं. एवरी ऑल्टरनेट डे इज टुमारो और ऑफ द डे आफ्टर टुमारो और प्रेजेंट ऑन द फ्यूचर. जैम यस्टरडे, जैम टुमारो, नो जैम टुडे. ऐसी दुनिया होती है कि आज में नहीं, हमारा जो एक दिन छोड़ के है वो कल में है, या एक दिन छोड़ के जो आने वाला कल है उसके लिए है, आज के लिए नहीं है. वो कहती है कैसी दुनिया है ये, स्टूपिडेस्ट टी पार्टी आई एवर अटेंडेड. ऐसे ऐसे छोटी छोटी बहुत भयंकर बातें है उसमें. कि मनुष्य जो है फ्यूचर में जीता है या पास्ट में जीता है. नाव, नाव के लिए जैम है ही नहीं. जो जैम है वो या तो यस्टरडे का जैम है या तो टुमारो का जैम है. आज का कहां है, जबकि तुम कहते हो एवरी ऑल्टरनेट डे. फिर से आते हैं विस्तार और सार. तो विस्तार को सार में समाने की के लिए और क्या करेंगे, अभी जाना है ये संकल्प रहे कि अभी छोड़ के जाना है, तो ही थोड़ा वैराग रहेगा कि अभी ये बस समेटना है, ये गया. और सब मर, हाँ ये है. विस्तार में गए, पहली बार तो नहीं जा रहे, इसी जीवन में कितनी बार गए, कल ही गए थे, यस्टरडे, कल के ही, कल जब गए थे 11 से 12 बजे के बीच विस्तार में, तो क्या मिला, 12 बजे स्थिति कैसी थी, 11 बजे विस्तार में जाना चालू किया, 12 बजे तक, 12 बजे तक पावरफुल स्टेज थी, क्या थी, मिला क्या. ये वास्तव में वैराग लाएगा, क्योंकि ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं, अगर हम ये सोचे हमने बहुत बार की है और मिला कुछ भी नहीं, हाथ तो वैसे ही खाली है, संसार के भोग, संसार की संबंध, संसार का जो भी है सब कुछ किया पर मिला क्या, दुखी हाथ में आया, इसके लिए अभी वापस वही नहीं करना है, तो वैराग आएगा. अब क्या हम विस्तार के लिए आए थे, हम आए किस लिए थे. एक दूसरी लास्ट बात यहां पे जो कही है कि स्थिति श्रेष्ठ हो कर्म साधारण. पहले भी कर्म साधारण थे, फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में कर्म वही परंतु स्थिति उच्च. चॉप वुड कैरी वाटर, यहां पर एक बार क्लास हुई थी, चॉप वुड कैरी वाटर. जैन कहावत है कि ज्ञान प्राप्त करने से पहले, एनलाइटनमेंट से पहले पानी भरते थे और लकड़ियां काटते थे, ये छोटे मोटे कार्य. अब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद भी काम वही है, चॉप वुड कैरी वाटर. बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, काम वही है, परंतु अब स्थिति बहुत ऊंची है, स्थिति बहुत महान है, स्थिति में बहुत पावर है. कर्म तो वही है, झाड़ू पहले भी लगा रहे थे अब भी लगा रहे, परंतु वो झाड़ू लगाना और अब का झाड़ू लगाना, इसमें बहुत अंतर है. अभी खुशी है, अभी जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा ना हो तब तक बुद्धि में ये रहे कि क्या वो हमारा, हमें कंपेनियन हो रहना है, उसको साथी बनाकर रखना है. मतलब हर कर्म करते समय वो अगर साथी है तो स्थिति महान रहेगी. कर्म साधारण, स्थिति महान के लिए एक ये बात, और फिर से वही बात, आत्माभिमानी स्थिति, स्वमान की स्थिति, भाग्य का स्मरण, कौन मिला है, किसका ये काम है, किसका ये कार्य है, किसने ये कहा है हमको. सूरज भाई हमेशा कहते ए बी सी डी, कर्म कार्यों में दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती है. ए कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लो, जिसको बदल ही नहीं सकते एक्सेप्ट कर लो उसको, जो हमारे वश के बाहर है हम बदल ही नहीं सकते. हमने सब कुछ कर लिया, सबको बता दिया कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और सबको पता है ऊपर से लेके नीचे तक, फिर भी चीज वैसी ही चल रही है और हमारा जबरदस्त विरोध है, हम नहीं चाहते ये चीज ऐसी चले, परंतु हमने सब कुछ कर लिया है उसको बदलने के लिए. व्यक्ति, परिस्थिति, स्थिति, स्थान या सेवा, वायुमंडल, उसमें गड़बड़ है, हमको एकदम, हम देख रहे हैं पैनी दृष्टि से कि ये नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति ही नहीं होना चाहिए कभी कभी तो. तो पहली चीज है एक्सेप्ट द थिंग्स यू कैनॉट चेंज. जो चीजों को तुम बदल ही नहीं सकते उनको स्वीकार करो. ए बी बाईपास, कुछ चीजों को बाईपास करके चले जाओ। हम यहां से वहां जा रहे, बीच में एक व्यक्ति का घर आता है, वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो दूसरे रास्ते से चले जाओ, छोड़ो, नया रास्ता ढूंढ लो और बाईपास करके निकल जाओ उसको, कि वो उसके पीछे पड़ते हो। जो चीजें अच्छी नहीं लगती अब छोड़ो उसको, कितना संघर्ष करोगे, लड़ाई चालू ही चालू है, बाईपास करके चले जाओ। सी, कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल कर दो, जैसे विकार, इसको हमको जाना ही नहीं है, कैंसिल, व्यर्थ, कैंसिल, निगेटिव, कैंसिल, कोई लेना देना ही नहीं है, कैंसिल कर दो जीवन से। अब उसके विस्तार में क्या जाए और उसके बारे में क्या जानकारी बढ़ाए। क्रॉस, बाबा ने मना किया है, क्रॉस, कैंसिल। डी, अब डी आप बताओ। कैंसिल में आ गया, ड्रामा, ड्रामा की एबीसीडी है ये, डिटैच, सभी राइट हो सकता है, डिटैच, डिलीट तो कैंसिल में आ गया, और डिवाइन, डिसाइड, निर्णय करो, सारे दिन भर में निर्णय करो कि ये चीज, ये व्यक्ति है, मैं हूं, यदि मैं इससे लड़ता हूं और मेरी जीत हो जाए। अहंकार में वास्तव में जब जीत होती है तब उसको हार ही समझना चाहिए। इन द वॉर ऑफ ईगो द विनर इज लूजर, इन द वॉर ऑफ ईगो, अहंकार के युद्ध में जो जीतता है अर्थात वो हारा है। कहां जीतना है और कहां हारना है, हार्ट्स, आर्ग्यूमेंट तो विन कर सकते हो, डिबेट में किसी को हरा सकते हो, वो बहुत जबरदस्त डिबेट हुई थी, डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कुरान के ऊपर, इन द लाइट ऑफ द कुरान, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। तो उसमें इतनी जबरदस्त डिबेट है, वो 2-3 घंटे की डिबेट है, जाकिर नायक और वो जो दूसरा व्यक्ति है उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें जाकिर नायक ने उस दूसरे व्यक्ति को पूरा पूरा एकदम हरा दिया है। इतने सारे आर्गुमेंट्स रखे हैं कुरान के फेवर में और इतनी सारी गलतियां निकाली है बाइबल की, बहुत सारी गलतियां निकाली है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से लेकर तो सारे मिस्टेक्स तक, परंतु दूसरा कैम्बरलिन ऐसा कुछ नाम है एक वो साइंटिस्ट का, उसको हरा दिया। परंतु वो जब हमने देखा था बहुत पहले, तो फिर भी लगा था कि जिसकी हार हुई है ना वही जीता, क्योंकि उसमें इतनी नम्रता थी, इतनी ज्यादा नम्रता थी उसमें। और दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नायक जो कि अहंकार से भरा हुआ व्यक्तित्व, हर चीज में डिफीट कर रहा है उसको, एक एक पॉइंट का खंडन किया उसने, सब कुछ उसने पता है उसे, तो सब कुछ एक एक कोटेशन दे दे के, बाइबल में कहां क्या लिखा है, कौन से लाइन में, कौन से वर्स में क्या है, सब सारा कोटेशन दे के पूरा ऑलमोस्ट इतने सारे एरर्स निकाले बाइबल के। और जो जो दूसरे डॉक्टर है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर कैम्बरलिन या ऐसा कुछ नाम है उनका, परंतु अहंकार के युद्ध में जो जीत है वो भी हार के ही समान है। लोगों ने जो कहा, लोगों ने उनकी स्तुति ज्यादा की जो हार गया था, क्योंकि उसमें नम्रता बहुत ज्यादा थी। केवल बौद्धिक विजय विजय नहीं है, इसके लिए लोग वो तो अलग चीज है, बाकी तो लड़ाई तो है ही। आज के मुरली में तुम जहां पर भी हो लड़ाई के मैदान में हो, आज के साकार महावाक्य है, तुम कहीं भी रहो, तुम कहीं भी हो लड़ाई के मैदान में हो। लड़ाई तो यहां निरंतर चालू ही है, दिवस रात्र अम्मा युद्धा सा प्रसंग अंतर बाह्य जग आनि मन। महाराष्ट्र के संत कहते हैं कि दिन रात हमको युद्ध का ही प्रसंग है, क्या करे, युद्ध ही युद्ध है, अंतर बाह्य जग आनि मन, जग और मन, जग और मन। तो चार चीजें आज याद रखनी है, सबसे पहला तो ये सारी चीजें कर्म के क्षेत्र की है, सबसे पहले देना है, सबसे पहले दाता बनना है, सबसे पहले दाता कौन बन सकता है, जो संपन्न है, और दूसरी क्वालिफिकेशन रहम है जिसके अंदर, और सबको देना है, सबसे ज्यादा उसको देना है जिसको सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसमें सबसे ज्यादा अहंकार भरा हुआ है उसके प्रति सबसे ज्यादा रहम, जो सबसे ज्यादा विघ्न है हमारे जीवन में उसको ही देना है। क्या देना है, इसकी भी एक लिस्ट निकाल सकते हैं, क्या क्या हमें देना है, पर हमने इसकी भी चर्चा कर चुके हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, ज्ञान, गुण, शक्तियां, सब कुछ क्या क्या देना है हमें दूसरों को, इसकी भी एक लिस्ट हो सकती है। तो कर्म के क्षेत्र में सबसे पहले दातापन का भाव, दूसरे गलतियां करेंगे, ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे कि जिससे गुस्सा आ जाए, परंतु हम भी अगर गुस्सा करें, हमारा भी वही एटीट्यूड रहे, तो उनमें और हम में भेद क्या? वो गलतियां करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु उसके बाद भी उनको स्वीकार कर लेना। रहम और दाता पहली बात, दूसरी जो कुछ विस्तार कर रखा है अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में व्यर्थ का, टाइम वेस्टर्स, ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें। ये एक सोच है, एक सोच एक गुफा की तरह है, उस गुफा में प्रवेश करते हैं, दरवाजा बंद होता है और हम अंदर अंदर ही अंदर रहते हैं, और जब उस सोच की गुफा में जाते हैं तो बाहर का सारा आउट हो जाता है। जब तक उससे बाहर नहीं आते, बाहर आते हैं गुफा बंद होती है, फिर सोचते हैं क्यों गए उसमें, फिर पश्चाताप करते हैं, नहीं जाना चाहिए था, परंतु वो एक गुफा ही है। वो विकार की इच्छा भी हो सकती है, वासना हो सकती है, या विस्तार हो सकता है। तो वो एक, तो जितना भी हमने विस्तार किया है क्या करना है उसको, कुछ भी नहीं देखना है अब, केवल वो पक्षी और उसकी आंख की पुतली, बस बी योर ओन अर्जुना। एक तीसरी बात कही, फरिश्ता स्वरूप, जो भी कर्म करते रहे उसमें लाइट, कोई भी चीज हेवी ना कर दे हमको, भारी हो जाए, किसने कुछ किया और हमने भी कुछ किया और फिर देखा कि सिर इतना भारी हो गया है कि शाम को नुमा शाम के योग में बैठ रहे तो वही चल रहा है, वो जूता का क्या हुआ, वही चल रहा है, दूसरा जूता का क्या हुआ, उसी के बारे में सोच चल रही है। और तीसरी बात कही, साधारण कर्म स्थिति महान, क्या करे उसके लिए सोचना है। ओम शांति।